आज हमने जो पढ़ाई करी है, जो हमने सीखा है, क्या आपको लगता है बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स हमारे पास आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह टैकल करने के लिए? जी सर, ये बताएं सबसे ज्यादा जो आपको प्रैक्टिकल टिप बहुत ज्यादा टच करी कि ये मुझे जरूर करना, ये बड़ी इफेक्टिव लग रही है, या आपको आपकी किसी प्रॉब्लम का हल मिल गया हो, तो वो लिखिए वो क्या लगी। जैसे कि मैं पर्सनली शेयर करूं तो मुझे ये रोजा रखने वाली बात बहुत अच्छी लगी कि हमें बचपन से बच्चों को ये इनकरेज करना चाहिए, और इन दिस सेंस कि ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। छोटे इन द सेंस ऑफ कोर्स कि जब वो रोजा रखने की उम्र को पहुंच जाए तो हम उन्हें इस चीज के लिए इनकरेज करें। और जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में हम पूरा एक फैमिली सेशन रख सकते हैं कि भाई अब सब पूरी फैमिली रोजा रखिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको इस चीज की याद बता दें। Pressing sense makes a change in your life and mood. लिबास की इम्पोर्टेंस बिल्कुल सही बात है, और लिबास में भी आप ये हमें पता है कि बच्चों का लिबास कैसा होना चाहिए, यानी कि उनके लिए क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को दुनिया के लिहाज से यानी एक रीजन देखिए उसको कहते हैं कि ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे बच्चों को सिर्फ फ्रॉक्स पहनाते हैं, स्पेशली लड़कियों को, तो जब हम फ्रॉक्स पहनाते हैं तो वो सब ये कहते हैं कि जैसे गर्मी बहुत लगती है बच्चों को और हम नहीं चाहते, तो बहुत छोटे हैं बता भी नहीं सकते। तो इज इट राइट अप्रोच, या इसको हम कैसे डिफेंड करें कि जो सही तरीका है उसको हम कैसे बताएं दूसरों को? जी आप लोग बताएं कि फिर कैसे बताएं दूसरों को कि ये इस चीज को हम कैसे रिप्लेस करें। लड़कियों को बचपन से है कि समझ और शऊर दिलानी चाहिए है, बिल्कुल सही। यानी कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो तब हमें भी तो गर्मी लगती है ना, लेकिन हमें अगर इस बात का एहसास है कि क्या हुक्म कितना अहम है तो हम फिर उसको करते हैं ना, फिर ये नहीं सोचते, अगर मुश्किल होती तो भी करते हैं, और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो आई थिंक कि जब बच्चों को भी हम बचपन से ऐसे कपड़े पहनाएं जो कि प्रॉपर होने चाहिए हैं और उनको छोटे छोटे कपड़ों से बचाना चाहिए है, तो फिर उनको इसी की आदत हो जाएगी, है ना। गुड को गुड एंड बैड को बैड बताना है, बिल्कुल सही। आपको नहीं, जब मेरी अम्मी थी तो मेरी अम्मी ने बचपन से मुझे इस चीज की आदत डाली कि वो मुझे रेशमी भी पहना देती थी और ज्यादातर हम जॉर्जेट ही पहनते थे, जबकि आप देखें कि हमारे लोगों में ये है ना कि गर्मियों में लॉन पहनते हैं और इस तरह से। आई डोंट डिसएग्री कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि ये लिबास दोनों तरफ चल जाते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, तो उस लिहाज से ना मुझे उसकी आदत डाली। लोग मुझे देख के कहते थे कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती, और मैं कहती थी मुझे गर्मी नहीं लगती, और वाकई नहीं पता चलता था, वो खुद भी यही पहनती थी, मुझे भी यही पहनाती थी। तो इससे मैंने वाकई चीज सीखी, मैंने कहा कि जब तक वो थी और उन्होंने इस तरह से मुझे रखा, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि इस चीज की भी हमें जरूरत है, या हमें अब वो गर्मी आए तो गर्मी के स्पेशल लिबास की अब हमें जरूरत है कि हम उस तरह के हल्के लिबास लाजमी बनाए, है ना। और बर्दाश्त आती है, बिल्कुल सही बात है, और किड्स सी मॉम्स डूइंग हिजाब एंड शो इंटरेस्ट इन डूइंग इट शुड बी इनकरेज रादर देन सेइंग अभी तुमको हिजाब करने की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, बच्चे हिजाब के बगैर ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली बच्चियों की बात करें चुके तो उनके मुझे इतने अच्छे अच्छे से लिबास जो हैं जो बाजार मार्केट में मिलते हैं, हमें स्टोर से मिलते हैं, बहुत एम्बेलिश किस्म की फ्रॉक्स मिलती हैं, और कभी वो स्लीवलेस होती हैं और कभी वो बिल्कुल ही छोटी छोटी स्लीव्स के साथ होती हैं, तो आई थिंक उससे भी बचना चाहिए, है ना। और जैसे ही हम आदत डाल देंगे बिल्कुल तो वो वैसे ही बन जाएंगे, सही बात है। और मुझे मेरी अम्मी मुझे मेकअप नहीं करने देती थी, नाउ आई एम मदर, अब अडाप्ट ही नहीं है, अब आदत ही नहीं है ना, अब आदत ही नहीं आपको मेकअप करने की। तो लेकिन खैर ये बात सही है कि पहले बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी रीजन है, एंड द फर्स्ट रीजन इज दिस, क्योंकि फिर जब इंसान जिस चीज में ज्यादा लगता है तो उसका दिल उसी में लगता है। फिर अगर हम ऐसी दुनिया की चीजों में भागने लगेंगे जो कि आई थिंक आपको पता ही है ना कि इर्द गिर्द हमारी यही चीज बहुत है कि अच्छा लगना, उसके लिए मेकअप का इस्तेमाल करना, बेहतरीन कपड़ों को यूज करना, तो जब ये मोटिव बन जाएगा तो फिर क्या वो बच्चे क्लासेस में आना पसंद करेंगे कि वो इस्लाम सीखने आए और कुछ चीजों पर अपने लिए रोक टोक पसंद करेंगे? वो नहीं पसंद करते ना, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आपने आज के लेसन से लिया वो बताइए जी। इसके अलावा और कोई पॉइंट आपने जो आज के लेसन से लिया वो क्या है? और जैसे एक और चीज भी मैं सोच रही थी कि हम कितना रश करते हैं सहाबियात पर कि सुभान अल्लाह, यानी उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ को बहुत अच्छी यानी कि जन्नत की बशारतें भी कह सकते हैं कि उनको दी, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े काम करे ना। और हम सहाबे कराम को अमूमन जानते हैं जिनके बड़े बड़े नाम है, लेकिन पीछे उनकी माओ के नाम जाकर हमें नहीं पता होते, लेकिन खामोशी से वो कितने बड़े काम कर दी ना, कि इन्हें उन्होंने पूरा एक एक आने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल भी दे दिया, और इतना बड़ा अजर जो उनकी औलाद को मिला उसमें उन्होंने भी अपना शेयर डाल दिया। आई लव द फास्टिंग टिप ऑन मंडे एंड थर्सडे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो बड़ी अमेजिंग टिप है और करना चाहिए। मैं समझती हूँ हमें अपने घर के हिसाब से एक फैमिली वे में कि सब रोजा रखें, तो इससे इंकरेजमेंट बहुत आती है। मैं देखती हूँ कि जैसे नॉर्मली मेरे हस्बैंड जब मस्जिद जाते हैं, क्योंकि उनको जाना भी चाहिए, सबको मर्दों को जाना चाहिए, तो लेकिन जिस दिन उनकी अगर कभी नमाज मिस हो जाती है वो घर में जो पढ़ाते हैं, और उस दिन अगर हम घर में जमात करें तो जो मेरा छोटा बेटा, तो वो यानी जब्राहिम है, तो वो फिर यही है कि वो साथ में फिर नमाज पढ़ते हैं। वो एक एक्स्ट्रा आप समझ लें कि अटेंशन फोकस और यानी शौक ज्यादा बढ़ जाता है ना, है ना। तो वो चीज जब हम साथ साथ करते हैं ना सब चीजें, उससे बहुत ही, अगर जो मर्द हजरात है वो जाते भी गए, एक सेकेंड, तो उसकी वजह से, लेकिन फिर कुछ टाइम घर में ऐसा होना चाहिए जिसमें सब मिलकर नमाज पढ़ें, तो उससे उनको भी शौक पैदा होगा। इसी तरह फिर हम बाकी सारी जो नेकियां हैं, ये जो अच्छी बातें हैं, उन सब में भी हम कर सकते हैं कि जब मिलकर करते हैं उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चों के पीसी पर नजर रखनी चाहिए, है बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नजर रखने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? उस्ताद ने ये भी बताया था हमने कि जब बच्चों के पीसी पर और उनकी सारी ये जो भी उनकी एक्टिविटीज उनके ऊपर नजर रखना हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मॉम एजुकेट देमसेल्व्स अबाउट इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। ये कितनी बड़ी बात है, एग्री करते हैं सब इस बात पर? जी, एक मदर के बड़ा अपने बच्चों की तरबियत में जी रोल है बहुत बड़ा। सो चिल्ड्रन देयर सी यू एज रोल मॉडल, उनकी बुनियाद अगर सही किरदार पर बनी हो तो एज आगे इतनी मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल, तो खुद सीखना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि क्लासेस लेने से पहले पहले कितने लोगों को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था? जी, ये जो अभी इतना हम कह लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे पहले हम में से कितने लोग जो कंप्यूटर से भागते थे कि बस ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, कोई और ही करके दे दे मुझे, है ना। देखा माशाल्लाह से आप लोग में से काफी सारे, मैं भी वैसे ऐसी थी, यानी कि मुझे भी कंप्यूटर इतना पसंद नहीं था। जी, जस्ट ईमेल्स, बिल्कुल सही, बेसिक बेसिक बस ईमेल्स चेक करी और ज्यादा टाइम नहीं इससे कभी स्पेंड किया, और ना ये कि उसमें जाहिर है कि कोई और काम भी नहीं किया जो कि प्रोडक्टिव हो सकता था। बिल्कुल, नेवर टच इट। सरप्राइजिंग टू सी इमेजेस गर्ल्स अपलोड एंड फिक्स इन अशोर इफ मॉम्स आर अवेयर ऑफ दिस। बिल्कुल सही बात है, यानी दिस शोज कि कितनी ज्यादा हम लापरवाह हो गए हैं ना अपनी औलाद से, कि हमें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमें कुछ नहीं आएगा तो बच्चे कितने आसानी से डिसमिस कर जाएंगे कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, यानी कि इनको तो हम कुछ भी कह रहे हैं यकीन कर लेते हैं। कभी आपने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स जानबूझकर इग्नोर करते हैं, कि जानते बूझते कि अब बस हम रोक नहीं सकते, या ये लड़का है तो इसलिए इसको करने देना चाहिए है, और ये लड़कियां अमूमन करते ही हैं। मैंने देखा है कि अब जो जैसे अपने इर्द गिर्द लोग देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लीनियंसी शो करते हैं कि अब ये लड़के तो ऐसा करते ही हैं, अब लड़के तो ऐसे ही करते हैं, बड़े होंगे तो खुद समझ आ जाएगी। तो क्या फिर समझ आ जाती है? आई थिंक इस पूरे टाइम में जैसे हम ऐसे वाकयात और ऐसी कहानियां भी पढ़ते हैं जिसमें औलाद अपने वालदैन से नफरत करते हैं इस बात से कि जब बड़े होकर उनको समझ आती है वो कहते हैं कि हमारे वालदैन ने हमें कुछ नहीं समझाया, है ना। जैसे कि एक किसी के बारे में आता है कि नॉन मुस्लिम था मेरे ख्याल से, तो बट आई जस्ट रिमेम्बर द स्टोरी, मुझे इसकी नहीं पता कि कहां से था, लेकिन उसमें यही था कि वो बच्चा जो है वो बचपन से ही चोरियां करता था छोटी छोटी सी, और उसकी वालदैन ने उसको नहीं टोका, और जब वो बड़ा हो गया और एक बड़ी चोरी के अंदर पुलिस उसे पकड़ के लगी, तो उसने कहा मेरी माँ इस चीज की जिम्मेदार है, क्यों मुझे देखती थी और मैं जो छोटी छोटी चीजें चोरी करके लेके जाता था उसको पता था मैं चोरी करके आती, लेकिन उसने मुझे कभी रोका नहीं। तो देखें कि दिस इज के जो हमें ऑन द लॉन्ग रन उनका एक आउटकम नजर आएगा, इससे अभी रोकना बहुत जरूरी है। फ्रॉम वेरी अर्ली माय मम्मी अबू यूज टू एडवाइस मी नॉट टू शेयर थिंग्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल नॉट कम्फर्टेबल शेयरिंग देम। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ड्रेसिंग ही सिर्फ फेसबुक के लिए होती है, सही बात, सही बात। और हम जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि जब हमने बच्चों को क्या चीज नहीं सिखाई, बर्दाश्त सब्र नहीं सिखाया, उनको पेशेंस नहीं दिया, खुद भी नहीं किया उनको भी नहीं सिखाया, तो उसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना, कि उनको भी कुछ नहीं करना आता। इसी तरह से हम एक और चीज भी देखते हैं कि बच्चों के ऊपर से गफलत की क्या वजह बनती है, कि आजकल पेरेंट्स क्या टाइम दे रहे हैं अपने बच्चों को, या वो यानी खुद किधर है, यू नो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन गैप और बिजी हैं, बिल्कुल, कि हम उन्हें टाइम नहीं दे रहे मुकम्मल जितना कि देना चाहिए है. बिल्कुल, इवन पेरेंट्स आर बिजी विद देयर गैजेट्स. बिल्कुल, एंड वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर तरबियत. बिल्कुल सही. यानी कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जैसे शैतान इस तरह भी डालते हैं, अच्छा नहीं मैं ये सुन लेती हूँ या मैं ये काम कर लेती हूँ, जो कि देखी है, लेकिन उस सबसे बढ़ के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा घर भी है. और अगर वो एक छोटी चीज हम ले रहे हैं लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निगलेक्ट हुई है, तो ये फिर फायदे नहीं है, इट्स नॉट बेनिफिशियल, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना. बिकॉज हम तो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई और नहीं लुक आफ्टर करेगा, उनको कोई और नहीं समझाएगा. बिल्कुल, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, यानी ये कम्युनिकेशन गैप और ये सब. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा रेडी हैं हमारे साथ, जज़ाकल्लाह खैरन कसी. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
देखिए कि जब माएं जाग रही होती हैं तो बच्चों को भी इतना कुछ आ ही जाता है ना. तो जिन लोगों ने ब्रेक लंबी किया वो ये छोटी सी वीडियो देखने से महरूम रह गए हैं. तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से इन चीजों को लें. उम्मीद है कि आप सबके पास अब बुक्स मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज हम बुक का पहला टॉपिक जो है उसको लेंगे. तरीका ये है कि चूंकि ये स्टोरीज हैं तो हम स्टोरीज को इसी तरह लेंगे कि एक स्टोरी पूरी पढ़ेंगे, मैं बुक में से रीड करूंगी, इससे आपको एक दो फायदे होंगे. एक तो आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी और कोई लफ्ज मुश्किल हुआ तो उसको वजाहत करेंगे, लेकिन फिर हर स्टोरी के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे और अपने लिए अमल की बातें लेंगे. शुरू करते हैं. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फौसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. جی جتنے بھی لوگ باہر ہماری آوازیں سن رہے ہیں ہم ان سب کو اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ پہلی ہی کہانی سے محروم نہ رہ جائیں. تو ہم انشاءاللہ نیک ماؤں کا مثالی کردار, یہ کتاب ہے بنیادی طور پر, مختلف واقعات کو جمع کیا گیا اس کے اندر. تو ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم آج اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہم بھی مثالی مائیں بن جائیں. اس بک کے شروع میں پیج نمبر 15 سے لے کر 34 تک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. آپ لوگ سب اس کو خود سے پڑھیے گا بعد میں, اور انشاءاللہ کسی بھی دن موقع بنا تو ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے, کیونکہ حدیثیں بہت واضح ہیں. تو میں اگر یہاں پڑھنے لگوں گی تو بہت وقت لگے گا, لیکن بنیادی طور پہ جتنا بھی ہم انٹروڈکشن میں باتیں کر چکے ہیں یہ سارے پوائنٹس اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے عملی کردار, کیونکہ عمل جو ہے یہ الفاظ سے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. تو نیک ماؤں میں سے سب سے پہلی ماں جو آج ہمارے سامنے اس بک کی روشنی میں ہے, ان کا قصہ جو ہے پیج نمبر 36 ہے. ام اسماعیل کا بے مثال کردار, کھول لیجئے, آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ فالو کر لیجئے, میں انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھوں گی. ام اسماعیل کا نام جانتے ہی آتے ہی ہم سب حضرت ابراہیم کو خود بخود یاد کرنے لگ جاتے ہیں. تو اصل میں یہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی کہانی ہے کہ اسماعیل ایک اتنا بے مثال بچہ کیسے بنا, آخر اس کے پیچھے کیا اسباب تھے. آئیے اس کو کہانی کے طور پہ سنتے ہیں. یہ منظر بڑا ہی عجیب ہے. شوہر اپنی بیوی اور شیر خواہ اکلوتے بیٹے کو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی لکو دک اور ایک سنسان وادی میں ایک مقام پر چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے, غیر عزیز ور ان کے لفظ ہیں, कि अल्लाह बेशक इन्नी अस्कंतु, मैंने बसा दिया अपने घर वालों को एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई पत्ता भी नहीं आता, कोई सब्जा नहीं उगता, दूर और नजदीक ना कोई कुआं है और ना कोई नहर है, चिरिंद परिंद और इंसान भी नजर नहीं आते, इसके आसपास तो क्या सैकड़ों मील दूर तक किसी आबादी का नामो निशान भी नहीं मिलता। तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दराज तक सब्जे का फुकदान, आग उगलती पहाड़ियाँ जिनसे आंखों में तपश और जलन का एहसास पैदा होता है, फिर तुंदो तेज शौक की हद से पहाड़ी वादियाँ भी तंदूर की मानित बन चुकी हैं। इस सख्त गर्म माहौल में ये शख्स अपनी बीवी और दूध पीते अकलौते बच्चे को लिए हुए सफर कर रहा है। ऐसे आलम में सफर करना एक मर्दे तवाना के लिए भी सख्त मुश्किल और पूरा आजमाइश होता है, लेकिन यहाँ तो एक सिंफे नाजुक और इसका दूध पीता बच्चा हमरा है। ये शख्स कौन है और क्या चाहता है? ये अल्लाह के खलील जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, नबियों के बाप। जहाँ आजकल खाना काबा वाक़े है, यहाँ पहुंचकर वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर दूसरी तरफ जाने का इरादा करते हैं। कबल इसके कि वो इनसे रुख्सत होकर चले जाते, बीवी ने कहा, आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इस इंसान और बियाबान मुकाम पर जहाँ ना कुछ खाने को नजर आता है, ना पानी है और न ही रहने को कोई महफूज मुकाम और घर बार दिखाई देता है, लेकिन शौहर खामोशी से चलता रहता है। यूं महसूस होता है जैसे कोई जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कुछ सोच रहे हैं। बीवी भी बच्चे को उठाए हुए इनके साथ साथ चली जा रही है। शौहर की तरफ से जल्द जवाब ना पाकर बीवी थोड़ी देर तक कुफ करके फिर शौहर से सवाल करती है, मेरे सरताज, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आपको अल्लाह ताला ने हमें यहाँ छोड़ देने का हुक्म दिया है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी के सवाल सुनकर अपनी बीवी और बच्चे पर एक शफकत और मोहब्बत भरी निगाह डालते हैं, फिर उठकर जवाब देते हैं। अब उनका जवाब सुन लेते हैं। नाराजगी की कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया है, मैं तुम्हें यहाँ अल्लाह के भरोसे पर ही छोड़े जा रहा हूँ। अगर से बज़ाहर यहाँ खाने पीने और रहने के लिए कोई सामान और असबाब नजर नहीं आते, लेकिन तुम्हें इस मालिकुल मुल्क पर भरोसा करना होगा जो इस कायनात के तमाम असबाब का खालिक भी है और इन असबाब पर मलकियत और तकसीम का खुली इख्तियार भी रखता है, जो इस पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिस्क फ्राहम कर रहा है, जो बगैर किसी सुराख के बिल्कुल बंद होता है। ये बातें सुनकर वो खातून किसी किस्म की फिक्र और परेशानी का इजहार नहीं करती, बल्कि नहायत इत्मीनान से शौहर को कहती हैं, ये बात है तो फिर मुझे कोई गम नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वही हमारी मदद करेगा और हमें बेआसरा हरगिज़ न छोड़ेगा। आप सोचिए जरा अपने आप को, अगर उनकी जगह हम होते तो क्या करते? मौसम और माहौल शदीद खतरनाक और दहशतनाक है, इड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने का तसव्वुर भी सामने है। वह आसानी अंदाजा किया जा सकता है कि इस सूरत हाल में माँ के दिल पर क्या गुजर सकती है, लेकिन वो माँ सब्र और रजा की तस्वीर बनी हुई पूरे यकीनों सुबात के साथ कुदरत इलाही की तरफ से मुस्बत नताइज की मुंतजर है। अल्लाह पर भरोसा करने वाली और सब्र और रजा की बहकर ये खातून बीबी हाजरा हैं, जिन्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से शर्फ़े ज़ौजियत हासिल है, और जो बच्चा इनके साथ है तारीख इसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। यही बच्चा बड़ा होकर एक नबी बनता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर कभी के जा चुके हैं, जाते हुए वो इनके लिए पकी हुई चंद रोटियां, थोड़ी सी खजूरें और पानी का एक मशकीजा छोड़ जाते हैं जो निस्क के करीब भरा हुआ है। बीवी हाजरा का दिल पूरी तरह मुतमईन है, वो अल्लाह की रजा पर राजी हैं। शोहर के जाने के बाद वो जमीन पर बैठ जाती हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत से जल्द ही मुतासिर होकर वो चारों तरफ नजरें दौड़ाती हैं कि शायद किसी तरह कोई दरख्त या कोई साया ही नजर आ जाए, लेकिन नदारत यानी नहीं देखता। इसी तरह वक्फे वक्फे से वो चारों तरफ देखती हैं, लेकिन हर बार नाकामी होती है। वक्त मुसलसल गुजरता चला जा रहा है। शिद्दत की इस गर्मी में प्यास बुझाने के लिए सैयदा हाजिरा मशकीजे का पानी खुद भी पीती हैं और अपने बेटे को भी पिलाती हैं। भूख के अजाले के लिए रोटियों और खजूरों पर ही गुजारा होता है। इन्हें अपनी भूख और प्यास से ज्यादा अपने बेटे की भूख और प्यास की फिक्र है। माँ तो ऐसी होती है न, इसलिए वो खुद हत्तुल अमकान पानी खजूरों और रोटियों की कम से कम मिकदार इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, ताकि बेटे के लिए ये सामान खुर्दोनोश ज्यादा देर तक बाकी रहे। शिद्दत की इस गर्मी में प्यास से घबराकर बच्चा बार बार पानी पीता है और यूं मशकीजे में मौजूद पानी मुसलसल कम होता चला जाता है। वैसे भी मशकीजे का पानी होता भी कितना है, बिलाखिर पानी खत्म हो गया। अभी पानी को खत्म हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को शदीद प्यास फिर से सताना शुरू कर देती है। बीबी हजरा बार बार कभी चारों तरफ नजरें दौड़ाती हैं कि शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए, और कभी बेटे को देखती हैं जो प्यास की शिद्दत और पानी न मिलने की वजह से बिल बिला रहा है। एक शीरख्वार बच्चा शदीद गर्म माहौल में अपनी कुव्वते बर्दाश्त को आखिर कब तक बरकरार रख सकता था। सैयदा हाजरा अजमाइश की इस घड़ी में परेशान जरूर हैं, लेकिन वो अपने रब से मायूस भी नहीं। इनकी ये परेशानी इंसानी फितरत का तकाजा है। असबाब की दुनिया भी अजीब है। असबाब को पैदा करने वाली महज अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, लेकिन इन असबाब से नफा उठाने के लिए अल्लाह का कानून सिर्फ इसी फर्द के लिए मुफीद साबित हो सकता है जो तलाश और जो तलाशी इस्बाब की अपनी सी कोशिश करके इनसे काम ले। चुनाचे इसी ख्याल के तहत सैयदा हाजरा भी मुतहरिक होती हैं। अचानक इनके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना पानी को इधर उधर जाकर तलाश किया जाए, और फिर वो बेटे को लिटाकर पानी की तलाश में निकलती हैं। इस सिलसिले में कभी एक तरफ जाती हैं और कभी दूसरी तरफ। पानी की तलाश के लिए निकलकर वो जब भी किसी तरफ जाती हैं तो हर बार जल्दी वापिस आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। वो एक अजीब कैफियत और कशमकश में मुब्तला हो चुकी हैं। पानी की तलाश में जाने के लिए बच्चे को छोड़ने को दिल भी नहीं करता, और अगर बच्चे को लिए बैठी रहती हैं तो पानी कहाँ से लाएं? अलगरज वो पानी के हसूल के लिए चारों तरफ दूर तक घूम फिराती हैं, लेकिन पानी को ना मिलना था सो कहीं से भी ना मिला। वो जगह जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, वहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी जो बाद में सफा की पहाड़ी के नाम से मशहूर हुई नजर आती है। वो सोचती हैं, शायद इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखने से किसी तरफ पानी के आसार नजर आ जाए, या कोई इंसान ही नजर पड़े जिससे पानी के हसूल में मदद मिल सके। इसी ख्याल के तहत वो दौड़ती हुई इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं, लेकिन पानी के आसार बजाहर बिल्कुल नापैद दिखाई देते हैं, यानी पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इस पहाड़ी के सामने एक और पहाड़ी मरवा की पहाड़ी नजर आती है। वो पहले तो तेजी से उतरकर दौड़ते हुए बेटे के पास पहुंचती हैं, फिर इसकी बेचैनी और बेकरारी को देखकर खुद भी बेचैन हो जाती हैं और निहायत तेजी से दौड़ते हुए इस दूसरी पहाड़ी पर जा चढ़ती हैं। वहां से चारों तरफ देखने से भी दूर दूर तक पानी कहीं भी नजर नहीं आता, पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है, जहन में ये ख्याल आता है, और फिर इसी कशमकश में वो सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियानी रास्ते पर दौड़ती फिर रही है, लेकिन पानी कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार बिलकते हुए बच्चे की प्यास और बेचैन माँ की दौड़ धूप को देखकर रहमत इलाही जोश में आती है। जमीन को हुक्म मिलता है कि इसी मुकाम से जहाँ बच्चा लेटा हुआ परेशानी की हालत में जमीन पर हाथ पांव मार रहा है, फौरन ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा जारी कर दे। हुक्म इलाही की फौरन तामील होती है और वहीं से पानी का एक चश्मा जारी होता है। इस वक्त बीबी हाजरा सातवीं बार चक्कर लगाकर वापस आ रही थी। जब वो इधर आई तो अचानक इन्हें करीब से एक आवाज सी आती हुई महसूस हुई। उन्होंने धड़कते हुए दिल के साथ इस तरफ देखा जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। वहाँ उन्होंने एक अजीब मंजर देखा, वो ये कि इनके लेटे हुए बच्चे के इर्द गिर्द पानी फैला हुआ है और इनका शीर ख्वार तिफल नीम खामोशी से हाथ पांव चला रहा है। बच्चे की हरकत से यूं जाहिर हो रहा था जैसे इसकी बेकरारी खत्म हो गई है। इसकी हल्की फुल्की आवाजों से भी यही महसूस होता था गोया वो खुश है। बीबी हाजरा दौड़कर वहां पहुंचती हैं और फिर सारा मंजर देखकर वो खुशगवार तौर पर हैरान और शशदर रह जाती हैं। पानी पर एक नजर डालते ही सारा मामला देखकर वो खुशगवार तौर पर हैरान और शशदर रह जाती हैं। पानी पर एक नजर डालते ही सारा मामला इनकी समझ में आ जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव के बिल्कुल करीब से एक चश्मा उबल रहा है। ये सारा मंजर देखकर इन पर जो कैफियत तारी हुई पहले ईमान खवातीन के लिए कंदीले राह की हैसियत रखती है। पानी मिलने की इस खुशी में वो अपने मालिक अल्लाह मालिकुल मुल्क की को नहीं भूलती बल्कि फौरन सजदे में गिरकर इनकी कुदरत के इस करिश्मे पर शुक्र बजा लाती हैं। सजदे से उठकर उन्होंने दोबारा पानी की तरफ देखा, चश्मा मुसलसल उबर रहा था और पानी इर्द गिर्द बहुत तेजी से फैलता जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाकर चूमा और गले से लगा लिया। फिर इन्हें पानी से कुछ कदमों के फासले पर लिटाकर चश्मे के पानी को मजीद फैलने से रोकने के लिए पानी के इर्द गिर्द छोटे छोटे पत्थर और पथरीली मट्टी की एक दीवार बांध दी। पानी जमीन से मुसलसल उबल रहा था। मुसर्रत और शादवानी के इसी आलम में बीबी हाजरा ने पानी को जम जम कहकर पुकारा जिसका मतलब है ठहर जा ठहर जा। इधर अल्लाह का हुक्म भी आ गया और पानी इसी वक्त ठहर गया। बाद में वो चश्मा जमजम के नाम से ही मशहूर और मारूफ हो गया और ता क्यामत इसी चश्मे की इसी नाम के हवाले से शिनाख्त मौजूद रहेगी इंशाल्लाह। बीबी हाजरा पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाती हैं और फिर खुद भी पीती हैं। पानी पीकर उन्हें इस पानी की अजीब खासियत महसूस हुई, वो ये कि इस पानी से माँ बेटा दोनों की प्यास भी बुझ रही है और वो गजा का काम भी दे रहा है। अभी कुछ साथ ही गुजरी थी कि चारों तरफ से मुख्तलिफ नौ के परिंदे उड़ाने भरते हुए इसी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वो उड़ते हुए आ रहे हैं। इनमें से कुछ चश्मे के इर्द गिर्द बनी हुई मंडेर के ऊपर बैठते जा रहे हैं और फिर उड़कर चश्मे में डुबकी लगाते हुए अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं और जिस्म को भी ठंडक पहुंचा रहे हैं। जबकि कुछ सीधे इधर आते ही पानी पीना शुरू हो जाते हैं। शायद दूर दराज के इलाकों के इन परिंदों को पानी की खुशबू पहुंच गई थी जिसे महसूस करके वो उड़ते हुए इस तरफ आकर इस पानी से अपनी प्यास बुझा रहे थे। वो चश्मा आज भी जमजम के कुएं की सूरत में मौजूद है। हर साल हज पर जाने वाले लोग इस बाबरकत पानी को खुद भी खूब सैर होकर पीते हैं और अपने साथ अपने वतन भी ले जाते हैं। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये दौड़ धूप ऐसी पसंद आई कि रहती दुनिया तक के लिए अपने बंदों को हुक्म दे दिया कि हाजरा की तकलीफ में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ते हुए चक्कर लगाएं। इस तरह आपका ये अमल दीन के एक अहम रुकन हज का बकायदा हिस्सा बना दिया गया। चुनाचे आज भी हर साल हज के मौके पर अल्लाह के लाखों बंदे सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हुए सही करते हैं। यू बीबी हाजरा की याद ताज़ा हो रही है और क्यामत तक होती रहेगी। बीबी हाजरा का ये बेमिसाल किरदार हर फर्द के लिए जबरदस्त तौर पर मुतासिर कुन है। पूरी तारीख इंसानियत में रजाए इलाही पर सब्र और रजा हुब्बे मादर और खलूस ईसार के हवाले से ही वाकया मुनफरद है। हुब्बे मादर कहते हैं माँ की मोहब्बत को और खलूस और ईसार तो हम जानते ही, यानी ये यूनिक वाक्य है। इस पूरे वाक्य में बीबी हाजरा का किरदार सरासर पेकरे तस्लीम और रजा वाला है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। अगरचे ये वाक्या वही इलाकी और दो बरगजीदा यानी चुने हुए अम्बिया कराम की जात थाए करामी से भी मुंसलिक है, लेकिन इसमें बहसियत इंसान बिल अमूम और बहसियत माँ बिल खसूस बीबी بیوی حاجرہ کا کردار نہایت متاثر کن ہے. بلند مرتبت ماں نے مشکل کی گھڑی میں اپنے خالق و مالک پر بھروسہ کیا, اسی کو مسبب الاسباب سمجھا اور اس آزمائش کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا. خندہ پیشانی کہتے ہیں اسمائلنگ فیس, مسکراتے ہوئے, جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوئیں یعنی کامیاب ہوئیں. یہ ایک صالح اور دیندار اور صابرہ ماں کا بے مثال کردار تھا, جس کی تقلید ماؤں کے لیے مصائب و مشکلات میں ان کی نوعیت کے مطابق آج بھی نہ صرف ممکن ہے بلکہ نتائج کے اعتبار سے بہتر اور نفع بخش بھی ہے. تو یہ تھی ام اسماعیل کی کہانی. انجوائے کیا آپ نے؟ کہانی تو کہانی ہوتی ہے نا, سبق کیا ہے اس کے, مورلز کیا ہیں, اب اس کو لکھتے ہیں. اسی کے اندر بہت کچھ ہیں لیکن اب ایک چیک لسٹ کی صورت میں لکھیں گے اور اپنا جائزہ بھی لیں گے. اور اگر آپ لوگ اس طرح سے لکھیں, جی اب اس کہانی میں سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں اس کو ایسے لکھیں گے کہ ایک لیسن اس طرح لکھیں کہ دوسرا ادھر نہ لکھیں, ایک لائن پہ ایک جگہ, اس کے بعد اینڈ پہ ہم یہاں چیک مارک لگائیں گے. اور یہ ہم سب کے لیے پھر ہوم ورک بھی ہوگا, بلکہ اپنے محاسبے کے لیے ہم اس کو اپنے گھروں میں جا کے کہیں بھی لگا دیں گے کہ کیا میں ام اسماعیل کی جگہ ہوتی تو میرا بھی یہی منظر ہوتا. پہلی بات دیکھیے, اب اس میں چونکہ کہانی بڑی واضح ہے لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنا پڑتا ہے. بڑھاپے کی اولاد کو اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آتے ہیں کہ جہاں اس اولاد کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. کیا اس میں ہمارے لیے ایک سبق نہیں ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین پھیلے تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکموں پہ ڈالنا پڑے گا؟ یہ تو اللہ کا ظاہر حکم تھا نا, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی منہ سے بھی نہیں کہا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی نہیں کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑو, اشاروں میں نبیوں کو بات بتائی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی دعاؤں سے مانگا ہوا بچہ ابراہیم کا, اللہ کا حکم آیا, اس بچے کو پردیس میں چھوڑا ہے. آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ خود کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس لیے یہاں بسایا کہ تیرا گھر آباد ہو جائے. یاد رکھیے اس میں جو سبق ہے یہ ہجرت اور قربانی کا سبق ہے. جب تک ہم لوگ اولاد والے, مال والے, بیوی بچوں والے قربانیاں نہیں دیں گے اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا. وہاں تو لٹرلی خانہ کعبہ کو آباد کرنا تھا نا. آج سب کچھ موجود ہے لیکن آج ہمارے چاروں طرف جتنے فتنے ہیں, اگر ہم سب چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے بیوی بچوں اور گھر کی ضروریات کو پیچھے کرنا پڑے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین کے تقاضے آپ کے ذاتی تقاضوں سے ٹکرائے ہیں. عام حالات میں اللہ کے حکم ماننے میں مزہ آتا ہے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, سکون بھی ملتا ہے, اجر بھی انشاءاللہ ہے, لیکن جب مشکل ہو اس وقت حکم ماننے سے ایمان ملتا ہے. جب مشکل حالات میں آپ اللہ کے دین کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں نا, تو اس وقت اللہ صرف آپ کو اجر نہیں دیتا بلکہ آپ کا نام اصحاب الیمین سے اٹھا کر السابقون الاولون میں کرتا ہے. اولئک المقربون, جنتیوں کے بہت سارے درجے ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے قربانیاں کرنے والوں کے مقام بڑے بلند ہیں. اس کو اپنے لیے لیں. کبھی کسی جگہ آپ کو اللہ کا حکم ماننا پڑے تو بسم اللہ کر دے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بظاہر اسباب کوئی نہیں ہے لیکن ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ اللہ کا حکم مان کر میں رسوا نہیں ہوں گا. بعض دفعہ ہم سوچتے بھی ہیں کچھ کرنے کو, بعض لوگ ہجرت کا سوچتے ہیں, بعض لوگ کچھ اور سوچتے ہیں, پھر مینز میں الجھ جاتے ہیں. ہمارے بچے اس چیز کے عادی ہیں, ہمارے بچے اس چیز کے عادی ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں پہ کی ہے جو ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے بچے دگم نہیں بنیں گے. جب بہت زیادہ ہم اس طرح سے اپنے آپ اور بچوں کو بہت ہتھیلی کا چھالہ بنا کے پالتے ہیں تو مسائل تبھی آتے ہیں. پھر اگلی چیز دیکھیے, بیوی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کیوں لے جا رہا ہوں اور بیوی چل پڑی. خود سے پوچھئے, اگر ام اسماعیل کا میں ہوتی تو شوہر کے کہنے پہ چل پڑتی؟ کیا میں اپنے شوہر کی اس بات پہ کہ وہ میری بات کا جواب ہی نہیں, میں لڑنا تو نہ شروع ہو جاتا؟ بعض دفعہ ہم اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس جب تک مجھے ہر بات کا جواب نہیں ملے گا میں وہ کام نہیں کروں گی. फिर इसमें आप देखें कि अल्लाह का तवक्कुल इनका बड़ा खूबसूरत मिलता है किताबों में कि अगर अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। आज अगर आप और मैं भी देखें, मैं अक्सर ये सोचती हूँ अगर अल्लाह का घर उस वक्त जमीन पे था ही की बुनियाद, जमीन तो वैसे ही अजनबी है, खास तौर पे जिस जगह बैठ के आज मैं और आप ये बातें सुन रहे हैं, इन मुल्कों में कहाँ था अल्लाह का घर, कहाँ है अल्लाह की किताब, और किस तरह से आज हम यहाँ अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं। मस्जिद बना लेना, मस्जिद हो जाना खुशकिस्मती की बात है, लेकिन असल चीज है कि वहाँ आने वालों की वो कैफियत हो कि अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। तो आज के दौर में अगर आपको और मुझे किसी किस्म का कोई ऐसा काम करना पड़े तो इसको खुशी महसूस करें। बस दफा आपको अपने दीन के तकाजों को निभाने के लिए घर वालों को नाराज करना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को गर्मी सर्दी में इधर उधर करना पड़ता है, तो मैं इस्माइल को याद हूँ और अबू इस्माइल को याद कर लें। अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होते, सिर्फ अपनी ही साथ में उलझते, तो बताइए कि ये उनको कभी मिलता। जब अल्लाह के नाम पे निकले तो फिर हुआ, फिर आप देखिए कि गर्मी और मरने का भी खतरा, चोरों का भी खतरा, रेगिस्तानों के तो सांप इतने जहरीले होते हैं, हम कितनी तावीलात करते हैं। एफ्स बर्ड्स, फिर क्या होगा, फिर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं आने वाले वक्त के सोच के बैठ ही जाते हैं, नो 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 वी कैन डू दिस। बेखतर कूद पड़िए, जब अल्लाह का हुक्म आता है अल्लाह की बात मानिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे लेके जाता है। फिर अगली चीज देखिए, बीबी हाजरा का दिल पूरी तरह मुतमईन था। ये इत्मीनान किस चीज का था? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह की रजा पे राजी रहने का दुनिया में नकद इनाम ये मिलता है कि दिल खुश रहता है। लोग आपको अच्छा कहें या बुरा कहें आपको फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद आप देखिए कि कोशिश, तवक्कुल का खूबसूरत नमूना हमें इधर दिख रहा है कि ये नहीं किया कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, कोशिश की, भाग दौड़ की, इधर से उधर से देखा, और जब कोशिश की तो अल्लाह ने चश्मा भी निकाल दिया। हम आज कहते हैं क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कोशिशें करेंगे, आज नामुमकिन लगता है, देखिएगा कल पता चलेगा। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको छोड़ा था, क्या उस वक्त ये पता था कि अल्लाह का घर बनेगा? हर वक्त लोगों से बसा रहता है, इतना इतने लोग तो दुनिया में किसी जगह को विजिट नहीं करते जितने खाना काबा जाते हैं। ये इब्राहिम की उन कुर्बानियों का नतीजा है। कुछ लोग कुर्बानियां दें जब नतायज ना दिख रहे हो, उस वक्त दीन का साथ देना ये असल में दीन का साथ होता है, हक का साथ होता है। बाद में जब साथ रिवायतें मिल जाती हैं, दास्तानें होती हैं, ये कारनामे वो कारनामे, फिर जो लोग आते हैं ना दीन पे, वो हो सकता है शक हो कि वो सिर्फ फतुहात के नाम पे आए हों। मसलन आप देखिए कि जिन लोगों ने शुरू में अल्लाह के नबी का साथ दिया, उनका तो नहीं पता था कि कल इस्लाम इतना पनपेगा। गज़वे बदर में जाने वालों को तो नहीं पता था कि फतह होगी, लेकिन वो गए, अल्लाह ने उनको कैसे लकब दे दिए, क्या साबिकून अव्वलून, कहीं उनको बदरी साहबी कह दिया कि आज के बाद तुम जो मर्जी करो मैंने तुम्हें जन्नत दी। अब उसके बाद की जंगें हुई, कई लोग दीन में मिले, उनको पता था नहीं इस्लाम कामयाब है, इट्स अ गुड रोल मॉडल। अब पता नहीं कि वो कामयाबी को खुदा बनाकर आए या हक को लेकर आए। तो एक जुमला याद रखिए, हक को हक समझ के साथ देना, चाहे पता हो कि सब कुछ डूब जाएगा, ये अल्लाह के यहाँ बहुत ताकत रखता है। और ऐसे लोगों को अल्लाह फिर आला जन्नतों में बिठाएगा। जब हक के साथ बहुत सारे शोहरतें और बातें और कारनामे होते हैं तो फिर तो खतरा होता है कि पता नहीं निफाक के साथ भी इस्लाम पे ना आ जाए। फिर इसके बाद एक और चीज देखिए कि अकलमंदी, ऐसे हालात में औरतें अपने होश गुम कर देती हैं। एक बच्चा घर में भी रोने लग जाए ना, तो मैंने देखा कि माओ को हलफली पड़ जाती है, करती कुछ है होता कुछ है। तो यहाँ से एक औरत का आयरन वुमन होना भी दिखता है। अल्लाह ना करे ऐसी मुश्किल हालात आ जाए कि आपको अपने बच्चे को अकेले ही पालना पड़े, तो बी ब्रेव, हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है, उफव्विज़ अम्री। जिन माओ की नजर अल्लाह पे होती है ना, वो शोहरों के ऊपर नजरें नहीं लगाती। आज बहुत बड़ा एक मसला ये है कि हम अपने शोहरों को ब्लेम बहुत करते हैं, आप साथ नहीं देते, आप नहीं करते, आप। और आप देखेंगे, अभी तो पहली कहानी शुरू हुई है ना, बीसियों कहानियां हम पढ़ेंगे इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला। हर जगह आपको माँ अकेली दिखती है, बहुत कम आपको बड़े क्यूपिड कपल या बड़े होम स्वीट होम वाले कपल्स दिखेंगे जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। तारीख गवाह है कि बड़ी बड़ी शख्सियात अकेली माओ की कोशिशों से हुई। इसलिए कि अल्लाह ताला सारे सहारों को तोड़कर ना खुद से जोड़ता है, और जब माँ का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर अल्लाह की मदद भी आने लगती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि पानी जब निकलता है, अब वो बच्चे को देखती है वहां पानी फैला। अमूमन ऐसे वक्तों में हम क्या सोचते हैं, कोई जादू है या कोई जिन आ गया या कुछ हो गया? कुछ भी नहीं, उन्होंने इसको अल्लाह का तोहफा समझ लिया। हालांकि कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा था, उसकी वजह से पानी निकला था। फिर आप देखिए कि इंसान अल्लाह की नेमत को पाकर क्या करे, सजदा किया। ये भी एक अमल की बात है। जब कोई छोटी या बड़ी आपको नेमत मिले, सजदा शुक्र, ये अल्लाह की रहमत से मिली है। और जब माएं इस तरह अल्लाह के साथ जुड़ी होती है ना, तो उनके बच्चे भी शुक्रगुजार होते हैं। बच्चों के अंदर जो रवैया बहुत अपनाने की जरूरत है ना, जिसको आप कहीं इंडल्ज कर दें, गूंद के डाल दें उनके अंदर, वो शुक्र का रवैया। जरा ऊंची आवाज से बोलने लगे, जरा कोई न शुक्री करने लगे, कंप्लेन करने लगे, नो बेटा तुम्हारी मेरी औकात ये भी नहीं थी कि मैं ये मिलता, यही खाओ। और जब आप अपने बच्चों को इस लो प्रोफाइल पे पालते हैं ना, एक दिन सूखी दें, एक दिन गिली दें, एक दिन ये करें, एक दिन वो करें, तो आप देखेंगे कि वो चीजों को अपना हक समझ के नहीं लेंगे, वो अल्लाह की अता समझेंगे। ये तुम हर दिन हर लम्हे अपने बच्चों के पेट भरे रखते हैं ना, ये भी दुरुस्त नहीं है। मसलन जैसे इस वाक्य को बुनियाद बना के हम क्या कर सकते हैं कि इस्माइल भी तो कितने दिन भूख प्यास में रहे ना, सिर्फ पानी पिया होगा ना, तो क्या हमारे बच्चे नहीं रह सकते? हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा रखा करें कम से कम, जिस दिन कोई नया खाना नहीं पकेगा, सब लेफ्ट ओवर खत्म करेंगे फ्रिज में से भी। आप ग्रोसरी नहीं लाई ना जब तक कि पिछली चीजें पूरी खत्म ना हो जाए, बल्कि एक दिन कुछ बात नहीं, क्या घर में वही खा लेंगे। ये जो हर वक्त हम कहते हैं ना एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो ये बच्चों को खराब कर देती है, हम खुद उनके मिजाज को बिगाड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान तो सिर्फ पानी पे भी जिंदा रह सकता है। फिर आप देखिए, मैं जब भी हजरत हाजरा का ये किस्सा पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि बीवी हाजरा की ये जो तड़प थी ना, ये सिर्फ एक इस्माइल के लिए नहीं थी। हम बाजार पढ़ रहे हैं कि बच्चे को पानी चाहिए था, तो पानी तो उनके घर में था, वहां से इधर क्यों लाके रखा? असल में ये एक नस्ल की प्यास थी, अल्लाह की जमीन तरस रही थी कि अब इस जमीन पर उसका नबी आए और इंसानियत को हिदायत की पुकार दे। और यकीन करें आज भी जमीन के इतने टुकड़े तड़प रहे हैं कि वहां कोई अल्लाह का बंदा जाए और अल्लाह की बात जाके करे। इस तरह आज बाजार इतनी आसूदगियों में, इतनी आसाइशों में लोग रह रहे हैं, लेकिन हिदायत नहीं है, दीन नहीं है, मस्जिदें नहीं है, दीन सीखने वाले नहीं है। तो हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें ऐसी खैर दे जैसी उम्मे इस्माइल को दी। देखिए आज तक वो चश्मा उगला हुआ है, वक्त कमी है, वरना आपको दिखाएं कि जमजम के चश्मे की क्या खूबियां। ऐसे प्रेजेंटेशन सब नोट करते थे, इंशाल्लाह हम वेब पे डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, पहले से भी कई डले हुए हैं। यानी जमजम के पानी में क्या कुदरत है, और इस पे क्या क्या लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और बता दिए कि इसमें खाना भी है, इसमें पानी भी है। हदीस में आता है कि जमजम उलीमा शुरी बलहू, जिस नीयत से पड़ेंगे पियेंगे। बल्कि मैं तो इसको घर में छुपा के रखती हूँ, कब? दुआओं के लिए। अब कहीं से भी आता है तो उधर एक बॉटल में ही होता है ना छोटा सा, कहीं से भी आप ले आते हैं। तो अब अगर मैं अपने हस्बैंड को पी लो, वो सारा पी लेंगे, तो मैंने कहती हूँ नहीं मैं आपको नहीं दूंगी, आप सारा एकदम पी लेते हैं। क्यों रखा हुआ? रखा, कभी दुआ मांगनी है एक घूंट लें, बिस्मिल्लाह पढ़े, खड़े हों, किबला रुखो, इसकी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ वअमलन मुतक़ब्बला वरिज़्कन तैयबा वशिफा मिन कुल्ली दाएं। तो हदीस में आता है जो भी दुआ करके आप जमजम का पानी पियेंगे ना, तो आपकी ये दुआ कबूल होगी। एक साहबी थे तो वो कहा करते थे कि अल्लाह मैं जमजम इस नियत से पीता हूँ कि क़यामत के दिन की प्यास से मुझे बचाना। एक इसी तरह कहते हैं कि मैं इसलिए पीता हूँ कि मुझे हौज़े कौसर का पानी पिलाना। तो हकीकत है ये खाने वाले के लिए खाना और पीने वाले के लिए पीना। कई साथी उम्रे और हज से आके बताते हैं कि हमें शुगर की बीमारी है, हम बड़ा डरते थे पानी पियेंगे तो वॉशरूम में जाना पड़ेगा, वहां जाते हैं कुछ भी नहीं होता। तो ये भी कितना अल्लाह का मौजज़ा। मैं खुद सोच रही थी अभी पढ़ते हुए, आज जो वाक्य हम पढ़े हैं, आज से आपको कितने सौ साल पुराना है, इंसानियत के बिल्कुल आगाज का दौर है ये, कई सदियां गुजर गई, आज भी ये वाक्य तरोताज़ा, और आज भी वो पानी फ्रेश है, ना वो चश्मा खत्म हुआ ना कुछ। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अल्लाह उम्मे इस्माइल पे रहम करे, अगर वो पानी को जम जम कहकर ना रोकती तो जमजम का पानी पूरी जमीन पे फैल जाता। इधर से एक और बात भी पता चलती है कि इंसान अल्लाह की नेमतें भी बस एक खास हद तक ही लेता है, फिर उससे भी थक जाता है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। कोई सवाल या कोई बात आपके जहन में आई, नहीं तो हम अगली कहानी पे चले। ऐसे तो एक ही सुननी चाहिए लेकिन हमारे पास वक्त चुके कम है, तो फिर हम इतने दिन तो आप आएंगे भी नहीं है। अगली पढ़ो। चलिए आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे ये कहानियाँ। और मेरी नजर में ये किताब बेस्ट गिफ्ट है उन औरतों को, उन माओं को देने की जो बहुत सिंपल किताबें पढ़ती, क्योंकि ये बुक हिस्टोरिकल बुक है, तोहफे में भी आप दे सकते हैं। और स्पेशली ये ऐसी चीज है कि जिसको बस आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये अलग बात है कि जब मिलकर पढ़ते हैं तो फिर उसमें से अमल की बहुत सारी बातें मिलती हैं। तो ये थी एक नबी की माँ। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरी नबी की माँ, और वो नबी कौन है? मूसा। यहाँ आप नोट करेंगे एक बात, हर बड़े इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। इस्माइल के पीछे अगर माँ का हाथ था, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उनकी माँ है, उम्मे मूसा का शानदार किरदार। पेज नंबर है 41, पढ़ते हैं इसको। फिरौन अपने दरबार में तख्त पर बैठा हुआ है, एक नजूमी आता है और फिरौन को झुककर सलाम करने के बाद मुखातिब होकर कहता है, ऐ बादशाह, मुझे पिछली रात को सितारों की गर्दिश से मालूम हुआ है कि बनी इसराइल के खानदान में अनकरीब एक लड़का पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर आपका ताजो तख्त उलट देगा, इसलिए अभी से पेशबंदी कर लीजिए, यानी कोई रेस्क्यू कर लें, कुछ इंतजाम कर लें, कहीं ऐसा न हो कि बाद में ज्यादा नुकसान हो जाए। मैंने अपनी हद तक आपकी खैर ख्वाही चाहते हुए निहायत गौर व फिक्र किया, मुझे कुछ सुझाव नहीं दिया कि हिफ्ज़-ए-मा तकद्दुम कहते हैं फॉर सेफ्टी, यानी फॉर द रीजन ऑफ सेफ्टी, हिफ्ज़-ए-मा तकद्दुम के तौर पर किया जा सकता है, इसलिए आप खुद अपने वजीरों और मशीरों की सलाह से कोई कदम उठाएं। फिरौन ये सुनकर बदख्वास और बेचैन सा हो जाता है, कभी उठता है कभी बैठता है, और अब वो दीवाना वार तदाबीर सोचने लगता है। हकीकत में इसका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है, कई रातें वो सही तरह सो भी नहीं सका। शिद्दत की इस बेचैनी में वो खुद भी सोच विचार करता रहता है और कई दिनों तक अपने वज़रा और मशीरान से भी इसके सलाह और मशवरे होते रहते हैं। आखिरकार एक तरकीब इसके जहन में आई कि बनी इसराइल के खानदान में जितने बच्चे पैदा हों इनको कत्ल करवा दिया जाए, जितने बच्चे पैदा हों इनको कत्ल करवा दिया जाए। इस तरकीब से इसने इत्मीनान का सांस लिया। तब इसने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घरों पर पहरा लगा दिया जाए, मुखबरी का ऐसा निजाम तश्कील दिया जाए। मुखबरी कहती है CID करना, खबर रखना। ऐसा निजाम तश्कील दिया जाए कि बनी इसराइल के जिस घर में लड़का पैदा हो इसकी इत्तला फौरी तौर पर हमें मिल जाया करे, ताकि इसे कत्ल करवा दिया जाए। इसने हुक्म दिया कि इस हुक्म पर फौरन अमल दरामद करवाया जाए। चुनाचे वजीर ने अपने मशीरों से मशवरे के बाद मुखबरी का ऐसा निजाम तश्कील दिया जिसकी रूह से बनी इसराइल के घरों पर जबरदस्त पहरा लग गया, जो जबरदस्त कत्ले आम शुरू हो गया। बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा होता इसे सरकारी कारिंदे कत्ल कर देते, किसी को मजाल ना थी कि इस नादिर हुक्म के खिलाफ आवाज भी उठा सके। फिरौन का जुल्म और सितम पहले भी जारी था, लेकिन इस हुक्म के बाद जबर इस्तबदाद और जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू हो गया। बच्चों के इस कत्ले आम से इन बच्चों के वालदैन और अजीज व अकारब के दिलों पर क्या गुजरती होगी। फिरौन को इसकी बिल्कुल भी कोई परवाह ना थी। बनी इसराइल तो पहले ही फिरौन के जुल्म और सितम से नीम जान हो चुके थे। रही सही कसर फिरौन के इस इंतहा जालिमाना नए हुक्म ने निकाल दी। अपनी सल्तनत और नाम निहाद खुदाई बचाने के लिए ये सब इंतजाम और इंसराम अना रब्बुकुम अलाला कहने वाला फिरौन कर रहा था। ये फिरौन का नारा था कि मैं तुम्हारा रब्बू, मुझे पूजो। लेकिन ये एक इंसान, और फिर इंसान भी वो जो अपने खालिक और मालिक का बागी और सरकश बन चुका था, की कोशिश थी। अल्लाह मालिकुल मुल्क और इलाहुल आलमीन की मशीयत कुछ और थी। फिरौन की तरफ से इसी कत्लेआम के दौरान में बनी इसराइल के घर में एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम मूसा अलैहिस्सलाम रखा जाता है, वही मूसा जो बड़े होकर बहुत बुलंद मर्तबत पैगम्बर बनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत डरती और घबराती है कि न जाने कब जालिम फिरौन के कारिंदे आए और नन्हे ही मूसा को लेकर कत्ल कर दे। उम्मे मूसा बहुत सोचती है कि बच्चे को कहाँ छुपाऊं, अपने ऊपर ले सरा, न्यू बॉर्न बेबी, माँ पे कितनी कमजोरी होती है, कितनी नकाहत, और ऊपर से गम यह है कि कोई मेरे बच्चे को ले जाए। بچوں کے پیدا ہونے سے ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے ہاں اس وقت معاملہ کچھ اور ہی بن چکا ہے. ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا دن پر انجو علم کی گھٹا چھا جاتی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بھی یہی کیفیت تھی، ایک طرف مصر کے یہ حالات بنے ہوئے تھے تو دوسری طرف یہ تمام حالات قدرت کی نگاہ میں بھی تو تھے. آخر اللہ رب العالمین کو ام موسیٰ کی پریشانی پر ترس آیا، ان کی طرف سے آسمان سے وحی آئی کہ تم اپنے بچے کی پرورش بے خوف ہو کر کرو، جب تمہیں ان کے قتل کی سازش یا ایسے حالات محسوس ہوں تو بے دھڑک ہو کر ان کو ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اور مت گھبرانا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور دوبارہ باہر حفاظت تمہارے بچے کو تمہیں لوٹا دیں گے، اور ہم نے تو اس بچے کو اپنا رسول بھی بنایا. سورۃ قصص اگر آپ کھولیں بالکل اس کے شروع میں ہی آپ کو یہ قصہ ملتا ہے، اس کی تلاوت بھی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. بالکل شروع کیا ہے تو میں یہ قصہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمیں موسیٰ کو اطمینان ہوا اور ان کا ڈر اور بے چینی دور ہو گئی. اس کے باوجود وہ ماں تھی، ان کے یہی احساسات اور جذبات تھے کہ اپنے خوبصورت بچے کو کس دل سے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہائیں، پھر ان کی جدائی کیسے برداشت ہوگی، بچہ صندوق میں کیسے زندہ رہے گا، اس کی کون خبر لے گا. یہ وسوسے بار بار پیدا ہوئے، مگر وہ اللہ کی بندی اور سچی مسلمان خاتون تھی، چنانچہ اللہ کے وعدے اور اس کی رضا پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ مطمئن ہو گئیں اور نہایت سکون اور اطمینان سے بچے کی پرورش کرتی رہی. ایک دن انہیں خطرہ محسوس ہوا تو اللہ کا نام لے کر اس کے بھروسے پر اپنے لخت جگر کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتی ہیں. اپنے اوپر لیں، ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے، اللہ اکبر. پھر دریا میں ڈال کر پھر ماں کی ممتا جوش میں آئی اور وہ بے چین ہو جاتی ہے. یہ مادری محبت کا تقاضا تھا، ورنہ انہیں اللہ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا. چنانچہ دل کو سنبھال کر پھر مطمئن ہو جاتی ہیں. صندوق آہستہ آہستہ تیرتا ہوا دور سے دور تر چلا جا رہا ہے، بالآخر اس قدر دور چلا جاتا ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. پھر وہ گھر کو لوٹ آتی ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں. اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ پردہ غائب سے کس امر کا ظہور ہو. دریائے نیل اپنے جوبن پر ہے، دریا کے کنارے فرعون کے کئی محل بنے ہوئے ہیں جن میں فرعون آیا جایا کرتا تھا اور بیٹھ کر دریا کی سیر کیا کرتا تھا. ایک روز فرعون اپنے ان محلات میں سے ایک محل میں اپنی ملکہ کے ہمراہ بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک دونوں کی نگاہ بیک وقت اس صندوق پر پڑی جس میں ام موسیٰ نے اپنے بیٹے کو لٹا کر دریا کے سپرد کیا تھا. دونوں حیران ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو بہتی چلی آ رہی ہے. جب صندوق کافی قریب آ جاتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صندوق ہے. فرعون ایک خادم کو حکم دیتا ہے کہ صندوق کو پکڑ لاؤ. خادم جا کر صندوق کو دریا میں سے نکال کر لاتا ہے. صندوق کھولا جاتا ہے تو سب حیرانی سے دیکھتے ہیں، اس میں تو کہ ایک خوبصورت بچہ لیٹا مسکرا رہا ہے. ہر کوئی بچے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے. کسی بدبخت نے فرعون کو مشورہ دیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا ہو سکتا ہے، قتل کے ڈر سے کسی نے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا ہے، اس لیے اسے فوراً قتل کروا دیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت اور بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے. ملکہ اس امر کی مخالفت کرتی ہے، اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لٹا لیا اور فرعون سے کہا، اے بادشاہ، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں تاکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور زندگی میں ہمارے کسی کام آئے، اس لیے اسے قتل نہ کیجئے. فرعون کچھ دیر سوچتا رہا، بالآخر اس نے ملکہ کی بات مان لی. چنانچہ بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا. بچے کے لیے دائی کا انتظام کیا جاتا ہے، دودھ پلانے والیوں کو دائی کہتے تھے اس دور میں. ایک دائی منگوائی گئی لیکن بچے نے اس کی گود کو قبول نہیں کیا اور رونے لگا. اس پر ملکہ نے بچے کو خود اپنی گود میں لے لیا اور کسی دوسری دائی کو بلانے کو کہا. دوسری دائی آئی لیکن بچہ اس کے پاس بھی نہ ٹھہرا، حتیٰ کہ پانچ چھ دائیاں آئیں، ہر کوئی ناکام رہی. محل کی کنیزوں اور دائیوں سمیت سب عورتیں حیران ہیں کہ کیسا انوکھا بچہ ہے. سب کا تاثر یہی ہے کہ ایسا بچہ اسے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اسی طرح کرتے کرتے دن گزرتے جا رہے ہیں، آخر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. ام موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد تو کر آئیں، اللہ کے وعدے پر بھی ان کو अल्लाह के वादे पर भी इन्हें पूरा पूरा भरोसा था, लेकिन इनको अजीब बेकली सी लगी हुई थी। ये माँ की ममता थी। अगर अल्लाह ताला इनके दिल को ना संभालता तो ऐन मुमकिन था कि वो अपने दिल का सब हाल जाहिर कर देती। अल्लाह ने इन्हें दिल का सुकून अता किया और वो खामोशी से अल्लाह की रहमत की मुंतजिर रही। उम्मे मूसा ने एक रोज अपनी बेटी से कहा, ए बेटी, अल्लाह ताला ने मुझसे मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का वादा किया है और ये भी कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास बखैर आफियत वापस आएगा। मुझे अपने रब के वादे पर पूरा ईमान है कि वो सच्चा बिल यकीन वो जिंदा और सलामत होगा। तुम जाकर तलाश तो करो कि वो संदूक किस तरफ गया है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन संदूक की तलाश में देखती भालती और टोह लगाती फिरौन के महल में जा पहुंची। वहां इसे कुछ बातों की आवाज आई। वो वहीं खड़ी होकर कान लगाकर इन बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। जल्दी इसे महसूस हो गया कि ये आवाज कुछ औरतों की बाहमी गुफ्तगू की है। वो औरतें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे ही में गुफ्तगू कर रही थी। बिलाखिर इन औरतों यानी मलका की कनीजों और खादमाओं की गुफ्तगू से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को यकीन हो गया कि मेरा भाई इसी महल में है। इस पर वो आगे बढ़ी, थोड़ा सा मजीद आगे गई तो इसने देखा कि एक जगह पर कुछ कनीजें आपस में बातें कर रही हैं। इनके चेहरों से परेशानी आया है। मूसा की बहन ने आगे बढ़कर कहा, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या बात है? पहले तो उन्होंने इसे कम उम्र समझकर नजरअंदाज कर देना चाहा, लेकिन इसके इसरार पर इसे सारी सूरत हाल बता दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, मैं इसी शहर में एक बहुत अच्छी दाई को जानती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस बच्चे के हक में मुफीद साबित होगी। अगर आप कहें तो मैं इसे बुला लूं, आप इसे भी आजमा लें। लेकिन वो औरतें मायूसी के आलम में रजामंद ना हुईं। उड़ते उड़ते ये खबर मलका के कानों में भी पहुंची। इसने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को बुलाकर कहा कि तुमने थोड़ी देर कबल इन कनीजों से जिस दाई का जिक्र किया उसको बुला लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खुश खुश घर आई और अपनी वालदा को लेकर महल में आ गई। इस खादमा ने जैसे ही बच्चे को इनकी गोद में डाला वो इनसे ऐसे लिपट गए जैसे मुद्दत से जान पहचान थी। आखिर वो अपनी वालदा से मानूस क्यों ना होते। ये देखकर फिरौन, मलका, दरबारी, कनीजें और वो औरतें जो बतौर दाया बुलाई गई थी सब हैरान और शशदर रह गए। इस पर फिरौन ने कहा, ये जरूर इसकी माँ है, जबी तो बच्चा इसे इस कदर मानूस है। उम्मे मूसा ने कहा, बादशाह दरअसल बात ये है कि मैं बहुत साफ सुथरी रहती हूँ और मेरे बदन से ऐसी खुशबू महकती है कि हर बच्चा मेरे पास आ जाता है और खुश रहता है। फिरौन का नाकस इंसानी जहन असल हकीकत की तह में पहुंचने में नाकाम रहा और इसने उम्मे मूसा की इस बात पर यकीन कर लिया। इसने बच्चे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को 2 साल तक परवरिश के लिए माकूल मुआवजे पर इनकी वालदा के हवाले कर दिया और वो खुश खुश अपने बेटे को लेकर अपने घर में आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूं अल्लाह का वादा सच्चा और पूरा होकर 2 बरस के बाद वो अपने अजीज बेटे मूसा को इस यकीन से वापस फिरौन के महल में पहुंचाई कि अल्लाह ने इनके बेटे को रसूल बनाने का जो वादा किया है वो भी पूरा होगा। यूं मूसा अलैहिस्सलाम इसी फिरौन के महल में शहजादों की तरह परवरिश पाने लगे। जब बात में अल्लाह ताला की रबूबियत और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करके मूसा अलैहिस्सलाम के ताकुब में मशियत इलाही से दरियाए नील में गर्क हो गया। उम्मे मूसा की बामकसद हयात का ये बाब आज भी मांग के लिए दरसे अमल और नसीहत का दर्जा रखता है कि अगर अल्लाह ही पर भरोसा किया जाए तो फिर वो अपने बंदों के लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। तो ये थी उम्मे मूसा की कहानी। आपने इससे क्या सीखा, शेयर करेंगे आप लोग? जी, तिलावत रेडी? जी, इसकी तिलावत सुनते हैं। अभी रिसेंटली हमने तकरीबन लास्ट मंथ लंदन कोर्स में ये सूरत की है, सूरत कसर। तो मैं जब ये किस्सा पढ़ ही रही थी रात को भी तो मुझे वही सब याद आ रही थी। तो दिल तो ये चाह रहा था कि खोलूं और तफसीर करवा दूं आपको, लेकिन जाहिर है कि अब इस वक्त इतना वक्त तो नहीं है कि हम आयतों की तफसीर सुने, लेकिन आइए तिलावत सुनते हैं और आप इंजॉय करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह उस माँ से जो वादे किए थे उनको फिर पूरा किया।
الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ويريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
میں دعا کروں گی کہ آپ سب اس عربی کو ایسے سن رہے ہوں کہ جیسے اردو پڑھتے ہیں. جو قرآن کے اسٹوڈینٹس ان سب سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ ایسے ہی لگا ہوگا آپ کو کہ آپ نے اردو میں یہ قصہ سنا ہے. ایسے ہی لگے چلیں الحمدللہ. جی کچھ باتیں شیئر کر لیتے ہیں اس میں سے. پہلی بات آپ دیکھیے کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے, اس پورے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر بچے کو دریا کے اندر ڈالنا یہ ہر ماں کا حوصلہ نہیں ہوتا. ہم تو بعض اب اپنے بچوں کو بیبی سٹنگ ایریا میں نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. کتنی ہی مائیں ہیں جو بچوں کو بنیاد بنا کر اپنا دین کمزور کر لیتی ہیں اور پھر وہ سب کمی بچوں کی اندر بھی جاتی ہے. عمل کی بات لیں, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اگر آپ کو اپنے بچے کو سردی میں نکالنا بھی پڑے اور دل میں خیال آئے کہ بچہ بیمار نہ ہو جائے تو میں موسیٰ کو یاد کر لیجئے گا کہ شکر اللہ کا ہمارے بچے تو زمین پہ تو ہیں, دریاؤں میں تو ہم نہیں ڈال رہے. اور یہ یقین کا بات ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہوگا جب اپنے اندر ایمان ہوتا ہے. آج آپ سب ادھر بھی تو یہ کورس کرنے آئی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ساتھی اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں, کچھ گھروں میں چھوڑ آئے ہوں گے. توکل کیجیے اللہ پہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. ماؤں کے ہاتھوں سے بچے گرتے ہیں اور چوٹ لگ جاتی ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے بچے کے پاس ہوں تو بچہ ٹھیک رہتا ہے؟ نہیں, ماؤں کے ہاتھ میں بچے مر بھی جاتے ہیں. تو زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی بات سیکھ لیں کہ جس کے ساتھ ہم ان کو بھی فائدہ دیں. تو بچوں کو بنیاد بنا کر کبھی دین سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ادھر پتہ چلتی ہے تکلیف کی ہے, اور وہ ہے کہ ہر دور میں فرعونی نظام مسلمانوں کی نسلوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے کھڑی فصلوں کو کٹوا دے چاہے بچوں کو مروا دے. اور آج اس کی کہانیاں بہت ساری عام ہیں کس طرح مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کیا جاتا ہے. دو بچے کہہ کر خوشحال گھرانے کے خواب دکھائے جاتے ہیں. اپنے ملکوں میں ایک ایک بچہ پیدا کرنے پہ اتنی سہولتیں دی جانی اور دوسرے ملکوں میں یہ خیال ڈال دینا کہ زیادہ بچے پیدا کرنا شاید بہت ہی حماقت کی بات ہے یا جہالت کی بات ہے. تو دشمنوں کی ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہر بچے کا اپنا نصیب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والقیت علیک محبت منی, اے موسیٰ آپ کے لیے میں نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. آج بھی آپ دیکھیے ہر بچہ مختلف نہیں ہوتا. کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہی خوبصورت بچہ اور لوگوں سے پیار لے. بعض دفعہ بڑی عام شکل و صورت کے بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے محبت بہت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا تحفہ ہے, محبت زیادہ ملے گی کہ کم ملے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں بہن کا کردار بڑا خوبصورت ہے. ہمیشہ ہم ماں بیٹے کی بات تو کرتے ہیں لیکن بھائی بہن کے رشتے کو بہت کم مینشن کرتے ہیں. موسا کی اس کہانی میں بلکہ سورہ قصص جب پڑھائی ابھی بھی پڑھائی اور پہلے بھی تو یہی بتایا کہ چار عورتوں کا اثر موسا پہ دکھایا گیا اس قصے میں. پہلے ماں کی قربانی کہ اللہ کے حکم پہ دریا میں بھی ڈال دیا, پھر بہن کی قربانی کے دشمن کے محل تک پہنچ گئی بچے کو بچاتے بچاتے, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگے اسی قصے میں موسا کی شادی ہوتی ہے اور ان کی بیوی کا کردار دکھتا ہے. تو ایک عورت ہر روپ میں مردوں کو فائدہ دے سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہو. پھر اس کے بعد جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کتنی بار فرعون نے چاہا بھی کہ وہ اپنے انہوں چاہ کے اس بچے کو مار دے, لیکن اللہ اس کی عقل کو مار دیتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوتی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو عقل اصل میں اللہ کے ہاتھ میں کس وقت کس کو دے کس وقت لے لے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سارے قصے سے جو ہم سب کو اپنی نظر میں بات رکھنی چاہیے نا, ہم مسلمان ہیں اور ہم غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے پالا جیسے نبیوں نے اپنی نبیوں کی ماں ان کو پالا تھا, تو تبدیلی ہماری ہی نسلوں کے ذریعے سے آئے گی. کبھی مایوس نہ ہو, مت کہیں کہ اندھیرے بہت ہیں, زمانہ خراب ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو دنیا کی فکر بھی کریں اپنے بچوں کی, لیکن ان کی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کی آخری کہانی ہم پڑھیں گے, چھوٹی سی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور کی ماؤں کی فکر کیا ہے اور اس دور کی مائیں کیا فکر کرتی تھی. کہانی ہے بیٹے کے انجام کے بارے میں, دین پسند ماں کی فکر مندی, پیج ہے 46. آئیے پڑھتے ہیں. سن 63 یعنی 63 ہجری میں یوم الحرہ کا مشورہ بلوائے عام ہوا, جس میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے جو ان کے سابقہ شوہروں میں سے تھے وہ بھی مارے گئے. دونوں بیٹوں کی لاشیں جب ام المومنین ام سلمہ کے سامنے لا کر رکھ دی گئیں. امیجن کریں ایک ماں کے دو بچے اور دونوں ایک جنگ میں شہید ہوتے ہیں, اور ماں ان کی لاشوں کو دیکھ کر کیا کہتی ہے, اللہ کی قسم ان دونوں بیٹوں کی موت میرے لیے بہت بڑی مصیبت بنی ہے. ان دونوں میں سے ایک تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھا بلکہ گھر پر ہی رہا, اس کے باوجود ظلمن یعنی ناحق مارا گیا. اس کے بارے میں مجھے قوی امید ہے کہ یہ جنت میں جائے گا, البتہ دوسرے نے جنگ میں حصہ لیا اور قتل ہو گیا. اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا کیا انجام ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں اس حادثے پہ یعنی میں اس بہت بڑے حادثے کو اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتی ہوں. پھر آپ رضی اللہ عنہ صبر و رضا کے ساتھ بیٹوں کے کفن و دفن کے انتظامات میں مصروف ہو گئیں. ایک دوسری روایت کے مطابق وہ دونوں شہید بھائی آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں بلکہ پوتے تھے, اور وہ آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ جو ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ کی صلح سے تھی اس کے بیٹے تھے. یزید بن عبداللہ بن زمع اور کثیر بن عبداللہ نامی ان دونوں بھائیوں کی واقعہ حرہ میں اس حالات میں شہادت سے زینب رضی اللہ عنہا کو فوری طور پر صدمہ پہنچا. بیٹوں کی لاشیں آپ کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر فرمایا مجھے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ کہ میرا ایک بیٹا تو میدان کارزار میں نہایت شجاعت سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے, لیکن دوسرا بیٹا تو گھر میں مقیم تھا, ظالموں نے گھر میں گھس کر اسے بلا وجہ اور ناحق قتل کر ڈالا ہے. پھر آپ نے بڑے حوصلے اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں صاحبزادوں کے کفن دفن کا انتظام و انضمام کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بیٹا جو گھر پہ مرا اس کے لیے کہہ رہی ہیں کہ جنت میں جائے گا, اور دوسرا جو میدان جنگ میں گیا اس کے بارے میں مشکوک ہے, یہ فرق کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے اس سے؟ سوال سمجھ آئے میرا؟ یعنی ایک میدان جنگ میں جا کے لڑا ہے اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن ایک گھر میں مرا گیا اس کے بارے میں کہتی ہیں جنت میں جائے گا. آپ ان ماؤں کی ذرا سمجھداری دیکھیں, کسی کے ذمہ نہیں آ رہا. جی آپ پیچھے سے. جی اور جی آپ میں بھی شاباش. دیکھیے پہلا تو ایک ناگہانی طور پہ مارا گیا نا, اور روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی ناگہانی طور پہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے, یعنی اس میں عمل دخل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کچھ بھی. لیکن جو دوسرا بچہ میدان جنگ میں گیا تھا پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی, کیا اس کے لاتے. اس میں آئے گا آگے قصہ ایک اور ماں کا, ہر ام حارثہ کی ماں. تو کہنے کی بات یہ کہ کیا ہم, اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم اتنا کریٹیکلی اپنے بچوں کے نیتوں کو ٹٹولتی ہیں یا ہمارے ذہنوں میں ان کے بارے میں کچھ اور خیال آتا ہے. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ماں اپنے آپ کو اس طرح سے جما کے رکھے کہ اس کے بچے کو بھی لے کر آئے. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی قصے ہم نے پڑھے ہیں, آپ ان ساری باتوں کو ذرا جمع کیجیے. ماں کا کیا تصور آتا ہے, فیشنیبل, الٹرا موڈ, بازاروں میں پھرنے والی, اور پھر بچے چنیں گے. آج ان میں سے ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ میرے بچے کو چن لے, مجھے نہ چننا. ہم چاہتے چناؤ ہو کہاں, ہم بازار میں, اور وہاں سے فرشتہ آ جائے کہ تمہیں چن لیے. ماں بنے, ماں بنے, پھر دیکھیے بچے کیسے چنے جاتے ہیں. ہم بعض اوقات اپنے بچوں سے وہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہم خود بھی نہیں ہوتے. ہمیں اپنے ماں باپ کے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی, یعنی خود کی, جو کہ ہمیں دوسروں کی ہوتی ہے. تو گھر کا نقشہ بدل لیں گے, ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور یہ چھوٹی سی اگر چنگاری ہمارے دل میں آ رہی ہے نا کہ ہمیں بھی ایسی میں بنے, ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے نا, اتنی خوبصورت کہانیاں آپ پڑھیں گے کل جب اور بھی, تو آپ کا دل چاہے گا کہ بس ہر ماں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لو. سب کے پیچھے کہانی ایک ہی ہے کہ ماں اللہ سے جڑی ہوئی, توکل والی, صبر والی, رضا والی, اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والی. آپ یہ ساری لسٹ اپنے لیے بنا لیں اور آپ ایسا بن جائیں, پھر آپ دیکھیے آپ ماں بنے نہ بنے لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ضرور بنیں گی. ضرورت اس وقت اچھی ماؤں کی ہے. یہ بچے تو معصوم ہیں نا, کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ خاموش آنکھیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, اگر ہمارے اپنے گھروں میں ہر وقت دیکھیے فلمیں چلتی ہیں, ٹی وی چلتا ہے, آوازیں ہیں, شور ہے, میوزک ہے, فون پہ ہم باتیں کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے, ایک پاؤں ادھر ایک ادھر, آخر یہ معصوم کیا سوچتے ہوں گے. میرے ذہن میں ماں کا تصور ایسا ہوتا ہے جیسے کول اینڈ کام, ٹھنڈک پڑ جائے بندے کو ماں کے سینے سے لگ کر. تو اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کہنے کی بجائے ہمیں کرنے والا بنا دے. اور جو کمی بیشی ہوئی ہے, آپ میں سے کسی سسٹر کا ایک کوشچن تھا کہ آپ نے جو بھی بتایا کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح ریز کریں, لیکن اب ہم میں سے جو یہ نہیں کر چکے وہ کیا کریں, تو کل انشاءاللہ شروع کے انٹرو سیشن میں آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گی کہ اب جن بچوں کو ہم ان آئیڈیل بنیادوں پہ نہیں پال سکے ان کے ساتھ کیا کریں. انشاءاللہ کل اس کا جواب ملے گا. باقی آج کے لیے کوئی کوشچن, کوئی اینی تھنگ, آپ لوگ شیئر بھی کریں. اگر آپ نے خاموشی بیٹھ کے سننا ہے تو پھر تو میرے لیے بہت آسان ہے آپ کو سنانا. آپ اپنے بھی آئیڈیاز لائیں, کل اپنے ساتھ کچھ لائیں, کوئی سوسائٹی کی باتیں, کوئی رپورٹس, کوئی ایسی چیزیں, تاکہ ہم اس کو انٹریکٹیولی لیں اور وہ پریکٹیکل ایشوز لیں. چلیں آپ یہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں کہ اس سوسائٹی کے بگ پرابلمس کیا ہیں آپ کی نظر میں, وہ لکھ کے لائیں, ٹیبل پہ رکھ لیں. ہم سب ان دنوں میں مل جل کے کچھ اس طرح کی کوششیں کر کے دیکھیں کہ کوئی پریکٹیکل کام شروع ہو. صرف مسئلہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا, اس کا حل بڑی بات ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ سے حل کروانے ہیں یہ مسئلے, اپنے سے ہر ایک اپنے اوپر لے. اونلی آئی کین ڈو دس, یہ کام صرف میرے سے اللہ نے کرانا ہے. بس آپ دیکھیے گا, آپ کھڑے ہو جائیں گے نا, اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. ہم جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے. اور اگر ہم سست, میں نے کیا کرنا ہے, ہماری کوششوں سے کیا ہوگا, ہاؤ از اٹ پاسبل, تو پھر نہیں ہوگا. اللہ ہماری مدد کرے. باقی یہ ہے کہ ایک دو میسج ہیں آپ لوگوں کے لیے. استاذہ جی, کیا ممکن ہے پھولوں کا گلدستہ کلاس کے اینڈ میں بھیجا جائے, جس کی منی صدقے میں جائے گی. اصل میں یہ کھل کے ادھر آ کے ایک دکھا دیجیے آپ لوگ, کیا ہے کہ دکھا کے دینا چاہیے. کل ایک درس تھا تو انہوں نے اینڈ پہ حسب عادت, لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو انہوں نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا, یہ پھولوں کے بکٹ دیے. تو میں نے ان کو اسی وقت کہہ دیا کہ یہ اسکول کی امانت ہے, تو اب یہ آپ میں سے کوئی پسند کر لیں اور اس کی کوئی قیمت جو آپ یہ ساری صدقے میں جائے گی, آف کورس اسکول میں, قرۃ العین میں, جہاں بھی ہے. تو آپ میں سے آج جو اپنے میاں کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے جائے. دکھا دیں, کھول کے ہے کہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں, پھول ہی ہے نا. अच्छा वो पॉट के साथ है, फिर ये तो ऑन गोइंग चलेगा हा? तो इसको फूल समझ के नहीं बल्कि जन्नत के फूल समझ के ले लें। आपने जो भी लेना चाहे कीमत क्या दे सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे तो ये कुछ करना नहीं आता। कितने का लेंगे, कितने का देंगे, इधर रख दें और कोई एक आप में से इसका फैसला कर ले। जी जी, मेरा मेरा जी, ये फ्रेश फूल है जी, ये फ्रेश फूल है जो आपके रह सकते हैं। कोई लेना चाहते हैं आप लोगों में से? आप लेना चाहती हैं, माशाल्लाह, आप भी लेना चाहती हैं। ऐसे ही लेके जाएंगे या कुछ डालेंगे इसके बगीचे? कितने का लेंगे? आप अपनी अम्मी के लिए लेना चाहती हैं, ठीक है। वो भी ऐसे ही है, वो भी
बड़े फूल है, वाइट कलर
खोल के दिखा देना जी। स्मीना जी, आप क्या चाहती हैं? आपने किसके लिए लेना है? ले लेना, ठीक है। बाकी आप इनका कुछ करके जो भी जिसको देना है, मैं मुझे तो करना नहीं आता, वरना मैं वो पता नहीं, लोग तो बड़ी बोलियां वगैरह लगाते हैं, लेकिन ले लें। और आपको पता है आपने इन लोगों को बाकी थर्सडे का कुछ बताया प्रोग्राम क्या हो रहा है, ताकि आप लोग इनको साथ शामिल करें? दो मिनट के लिए आ जाए इधर और जो भी बात है उसको बता दें। तो ऑनलाइन वालों को फिर हम अब इजाजत दे दें। इंशाल्लाह आपका ये सेशन मंडे थर्सडे तक चलेगा, लेकिन थर्सडे में इस तरह मेरे जहन में आ रहा है कि हम बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, तो कंटिन्यूसली करके फिर थोड़ा जल्दी, तो एंड पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और क्या वो आपको बाजी बता देते हैं जी। डर क्यों रहे? ओके, इसको जी वो जहां से मर्जी ले लें। प्लीज कैन यू टेल अगेन वाई एट होम जन्नत उम्मीद? ये समझ नहीं आया मुझे आपका सवाल। अच्छा ठीक है जी, आप सवाल को लिखिएगा तो फिर ठीक है। चले जजाक अल्लाह खैर, आपकी अम्मी को अल्लाह ताला उसमें इज्जत दे। और ये यस्मीन आपने लेना? कोई इनको बीट करना चाहता है तो कोई और भी ले ले। चलिए इनको दे दीजिए, बढ़िया आप थोड़ा सा बता दें जो भी सर, 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 सर,
जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है, और खास तौर पे कुछ मेरे पुराने साथी जो हमारे शुरू के साथी हैं, उनको देख के और भी बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ताला इनका साथ हमारे साथ इसी तरह हमेशा हमेशा रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ हैं और कुछ अल्लाह की बातों में से, अल्लाह के कलाम में से कुछ सीख रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे हम भी वैसी माएं बन सके जैसी नेक माओं का किरदार होना चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहु ताला को पसंद है। और जो सहाबियात के दर्जात पे थे, जो अम्बिया की माओं के थे, तो बेशक हम वो उस दर्जे पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो आप सबसे गुजारिश है, अभी भी हमारे पास दो दिन हैं, आप अपने सब साथियों से भी कहें, अपने घर वालों को भी कहें, और खास तौर पर यंग बच्चियों को भी, और जो यंग बच्चियां इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए और ज्यादा जिंदगी में बरकतें दे, बड़ी खुशकिस्मत है वो, मुझे तो उनकी किस्मत पे रश पाता है। तो अब इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन जो है हमने साथ थोड़ा सब्र रखा हुआ है, जिसको नस्क में कहते हैं आप श्लुतिंग फेस्ट, के थोड़ी सी हमारी फेस्ट भी हो जाए, क्योंकि ये छुट्टियों के दौरान आ रहा है सारा हमारा कोर्स चल रहा है, तो छुट्टियों में थोड़ी सी भी फिर पार्टी भी हो जाए, तो इसलिए फिर मीना बाजार रखा है। और ये इसका एक मकसद है, इस मीना बाजार का या इस सारी सामणिंग का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ये सिलसिला चल रहा है, और आगे से हमारे बच्चों के बारे में जो है ना, हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कुरतुलैन के नाम से, कि हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने। तो उसके लिए ही ये सबसे पहला जो है ना हमारा मीना बाजार है, और आप सबसे भी गुजारिश है, और साथ दूसरों को भी, वेबसाइट पे भी इसकी जो है ना वो, फेसबुक पे भी इसका आ गया है, फ्लायर आ गया है, तो खुद भी आप पर्सनली भी दूसरों को दावत दे सकते हैं। तो मीना बाजार तो इंशाल्लाह 3 बजे शुरू होगा, और उसकी मजीद डिटेल जो है ना वो इंशाल्लाह सिस्टर रबिया जी
बता दीजिए ना, किस किस स्टॉल लेना है कुछ भी है।
हाँ जी, लोगों इसमें कपड़ों के स्टॉल भी हैं और खाने पीने के भी हैं, और अगर आप लोगों में से कोई है, ऐसे सिस्टर हैं जो अपना स्टॉल लगाना चाहती हैं, तो वो भी रिसेप्शन पे बात करके तो जो है ना अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, कि अपनी उनको हम जगह दे देंगे, वो आके अपना स्टॉल लगा ले। تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جی ربیع جی, اس کی ٹائمنگ, اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے نا سب ربیع جی بتاتے ہیں. پھر بھی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے سسٹر فرحانہ نے کافی ڈیٹیلز بتا دی ہیں, لیکن اگر کوئی اور کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس طرح بچوں کے لیے فریمز ہوتے ہیں, ایون گھروں میں جو آپ ڈیکوریشنز ہیں, جس طرح ہمارے پاس, ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کو سجائیں لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم, جس طرح گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں, کچھ پیاری سی تصویریں ہیں, اسلامک پینٹنگز ہیں, تو وہ ہمارے کافی پیارے ساتھی انہوں نے تیار کی ہیں. کچھ پزلز ہیں بچوں کے لیے کہ وہ ایسے اس میں مورل ویلیوز بچوں کو سکھائیں گے ان پزلز کے تھرو. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے سٹالز ہوں گے تو, اور کھانے پینے کے ہوں گے, اور جیسے انہوں نے بتایا کپڑوں کے ہوں گے, اور کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں ہوں گی. تو اس میں سے جس کو جو چیز پسند آئے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹ میں اس کا سارا فنڈ جائے گا. اور اس میں آپ نے ابھی سٹال اگر کس نے لگانا ہے تو اپنا نام بتا سکتے ہیں آپ, تو ہم آپ کا نام لکھ لیتے ہیں. اور
ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ اپنا کوئی بھی پارٹیسپیشن اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کچھ بھی, تو آپ لوگ باہر ریسپشن پہ پھر ان لوگوں سے معلوم مطلب. ابھی فی الحال تو یہ کہ ورڈ بائی ماؤتھ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ چلیں چھٹیوں میں ایک موقع اور آ رہا ہے خوش ہونے کا. ٹھیک ہے, تو کل ملتے ہیں کتنے بجے, سب بولے 12 کب بجتے ہیں, چھوٹی سوئی کتنے پہ ہوتی ہے, اب سوئیوں والی گھڑی ہی نہیں ہوتی. جی آپ نے کچھ کہنا,
جی کل سے 10 کا نوٹ کرنا تھا.
جی کر دیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل شام کو استاد جی کا شتن میں درس ہو رہا ہے, تو اس کے لیے مزید انفارمیشن آپ جو ہے نا ریسپشن سے لے سکتے ہیں.
جن کے گھر پہ ان کا نام بول رہے ہیں نا,
باجی نصرت کے گھر پہ ہو رہا ہے, تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا سکتی ہیں. اپنا ویل ہوگ سنتا ہے شتن پہ یہ جگہ ہے. جی جی ہاں جی, ان کو فرح جی کو بھیج دیں, وہ اپنا ٹیلی فون نمبر یہاں پہ لکھ دیں, آپ لوگ نمبر لے لیں, پھر وہ اپنا ایڈریس ہی لکھ دیتی ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گا. ویسے ادھر اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے, تریشو این اور پھر ریشو این جو ہے نا وہ بالکل
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, کیسے ہیں آپ سب سسٹرز؟ جی کیسی لگی آج ہمیں یہ بک پڑھ کے؟ الحمدللہ ہم نے اس میں سے 3 سٹوریز پڑھی. جی بہت اچھا لگا الحمدللہ, مجھے بھی بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے چھوٹے بچوں کو سٹوری سنائی جا رہی ہیں, اور وہ جب سٹوریز میں سن کے ایک دم ایکسائٹ ہو کے بولتے ہیں نا ہم بھی کریں گے, ہم بھی ایسا کریں گے, تو مجھے بھی بالکل ویسے فیل ہو رہا تھا. جی اے مسٹ فار آل ویمن, دیٹس رائٹ, الحمدللہ بہت ایمان افروز تھا. جی بتائیں گے آج ہم نے کن تین کس بارے میں ہم نے سٹوریز پڑھی, ہم نے کن تین ماؤں کا کردار آج دیکھا. جی ام اسماعیل, ام موسیٰ, الحمدللہ جی جی ام موسیٰ, ام اسماعیل علیہ السلام, ام موسیٰ علیہ السلام, اور تیسرا وہ ماں تھی جن کے دونوں بچے شہید ہو گئے ایک ہی وقت. صحیح جی, ایک ایک پوائنٹ میں شیئر کریں گے. ام سلمہ الحمدللہ, کہ کیا آپ کو یہ 3 سٹوری سے آپ اپنے لیے کیا ایک ایک لیسن, ایک ایک سبق گھر لے کے ہم اپنے ساتھ چلیں گے. ویسے تو لیسنز بہت سارے ہیں استاذہ نے جیسے ہمیں بتایا, ہم اس کا چیک لسٹ بنائے, ہم اپنے گھروں میں لگائے,
और हम वन बाय वन ठीक करते जाए कि हमें कौन सी क्वालिटीज नहीं है, हमें किस पे काम करना है। अल्लाह ताला की रजा पर राजी। जी, मुझे जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा जो उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम में भी था, उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम में भी था और जो उम्मे सलमा में भी था कि कुर्बानी के बगैर दीन नहीं आता। हम जब तक अपनों की कुर्बानी नहीं देंगे हम दीन का काम नहीं कर सकते। जी, बच्चों की आखिरत की फिक्र सही, अल्लाह पर तवक्कुल, माँ की फिक्र, बच्चों की मौत नहीं उनकी दीन की थी बेशक, सही। और तवक्कुल और उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम से अगर हम कुछ पॉइंट शेयर करेंगे। जी, अल्लाह पर तवक्कुल और अस्बाब इख्तियार करने की बेहतरीन मिसालें बेशक, शुक्रगुजारी, आजिजी, जी सबर के साथ अल्लाह की मदद, अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कुल अलल्लाह, अतीउल्लाह, सही, अल्लाह की रजा पर राजी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम में भी हमने यही देखे ना कि किस तरह अल्लाह ताला के लिए उन्होंने और अपने दिल को सबर रजा विद अल्लाह ताला एंड एफर्ट्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कैसे अल्लाह ताला के वादे पर यकीन था। और मुझे ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला की राह, अल्लाह ताला के लिए वो अपने बच्चे को दरिया में भी डाल सकती है और हम बच्चों के बहाने बना के, हम हमारे घर वालों के रीजंस बना के हम बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हैं। ओवरकम द फियर्स ऑफ मदरहुड विद तवक्कुल अला अल्लाह। जी सही। जी इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी है हम भी हमारा हिस्सा डालें, हम भी हमारे कुर्बानियां दें। और क्या ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बच्चे वाली माएं हैं? माशाल्लाह हमारे साथ क्लास में बहुत सारे सिस्टर्स होते हैं ना जो अभी अनमैरिड है या जो अभी जिनके बच्चे नहीं हैं। जी नहीं, उनके लिए ये लेसन है ना कि हम खुद अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें, हम अभी से हम मोटिवेटेड हो। तो कल के लेक्चर में हमने सुना था ना, जैसी माँ वैसे बच्चे, तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर सके। जी, गुड प्रिपरेशन फॉर दोज नॉट, जी अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त से पहले तैयारी करनी है इंशाल्लाह, वी कैन प्रिपेयर एंड आल्सो हेल्प फ्रेंड्स फैमिलीज एंड किड्स। जी सही तनवीर, सही, इंशाल्लाह आप जरूर शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेकेंड डे भी हो गया और दो दिन है, अपने फ्रेंड्स को फैमिली वालों को जरूर इन्वाइट कीजिए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत फायदेमंद नसीहतें हैं जो हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और औरों को भी हम फायदा पहुंचा सकते हैं। चेकलिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट को अच्छे कुछ फ्लायर की शक्ल में या कुछ अच्छे इमेजेस बना के अपने नेबर्स के साथ शेयर कीजिए, जस्ट एज अ टिप्स का, या कुछ अच्छा हेडिंग देके और अपने फैमिलीज में शेयर कीजिए, हैंडआउट्स बनाइए, अपने नोट शेयर कीजिए। हो सकता है हमारी छोटी सी कोई एक कोशिश किसी को कहां से कहां फायदा दे सकती है। صحيح جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا كثيرا इंशाल्लाह आप सबसे कल फिर क्लास में मुलाकात होगी। खुश रहिए, आफियत में रहिए और जहाँ भी है सबको एक दूसरों को जरूर दुआओं में याद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم